اے خدا تو بتا تیرا کیا نام ہے، تو ہے رہتا کہاں، تیرا کیا کام ہے، اے خدا تو بتا تیرا کیا نام ہے، تو ہے رہتا کہاں، تیرا کیا کام ہے، کیا ہے تیری حقیقت جو گمنام ہے، تجھ پہ خود کو چھپانے کا الزام ہے، دنیا بنائی کیوں، مقصد بتا، تو نے دنیا بنائی کیوں، مقصد بتا، روحیں اس میں بسائی کیوں، مطلب جتا، روحیں اس میں بسائی کیوں، مطلب جتا، تیرے جلبوں سے روشن زمین آسمان، کیوں کسی کو نظر تو نہ آتا یہاں، تیری پردہ نشینی کا انجام ہے، ڈھونڈتا آج بھی تجھ کو انسان ہے، اے خدا تو بتا تیرا کیا نام ہے، تو ہے رہتا مذہب میں ہے تیرے چرچے بیاں، شان میں تیری لکھتے ہیں پرچے وہاں، دھرم مذہب میں ہے تیرے چرچے بیاں، شان میں تیری لکھتے ہیں پرچے وہاں، سب کے بھگوان اپنے ہی اپنے جہاں، نہ سمجھ تجھ کو سمجھے نہ لڑتے یہاں، تو سمجھدار ہو کے بھی انجان ہے بدی کرتے انسان، تو بدنام ہے، اے خدا تو بتا تیرا کیا نام ہے، تو ہے رہتا جنت بنانے کی محنت بھی کی، پھر یہ دوزخ کو لانے کی زحمت کیوں کی، تو نے جنت بنانے کی محنت بھی کی، پھر یہ دوزخ کو لانے کی زحمت کیوں کی، کھیل کیسا گجب تھا گزب ڈھا دیا، نیکیوں کو بدی سے ملا جو دیا، لینا کب تک تمہیں سب کا امتحان ہے، اب سبھی کے دلوں میں یہ ارمان ہے، اے خدا تو بتا تیرا کیا نام ہے، تو ہے رہتا کہاں، تیرا کیا کام ہے، اے خدا تو بتا تیرا کیا نام ہے، اے خدا تو بتا تیرا کیا کام ہے، کیا نام ہے، کیا کام ہے، اے خدا
ओम शांति। अभी हम सभी के मध्य उपस्थित हैं आदरणीय राजयोगिनी उषा दीदी जी, तो हम सभी जोरदार तालियों से दीदी का स्वागत करेंगे। साथ ही मैं बहनों से अनुरोध करूंगी दीदी को गुलदस्ता देकर दीदी का स्वागत करें। अभी मैं चंद शब्दों में दीदी का परिचय आप सभी को देना चाहूंगी। आप 1974 में ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में आए। ब्रह्मा कुमारीज की आध्यात्मिक फिलॉसॉफी और व्यवहारिक ज्ञान ने आपको बहुत प्रभावित किया और 1980 में आपने अपना संपूर्ण जीवन मानव जाति की आध्यात्मिक सेवाओं अर्थ समर्पित कर दिया। वर्तमान समय आप ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर में रहकर ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप एक सीनियर राजयोगा टीचर, मैनेजमेंट ट्रेनर एवं मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आपने कई किताबें भी लिखी हैं, सेल्फ मैनेजमेंट, मैनेजिंग लीडरशिप एवं अध्यात्म की ओर उनमें से हैं। कई कॉरपोरेट सेक्टर, कॉलेजेस, विश्वविद्यालय, मेडिकल एसोसिएशंस, सामाजिक संस्थाएं और मैनेजमेंट एसोसिएशन में आपने हजारों प्रेजेंटेशन दिए हैं। कई संस्थाओं एवं एसोसिएशन ने आपको प्रतिष्ठित अवार्ड द्वारा सम्मानित किया है, जैसे कि पब्लिक रिलेशंस काउंसलिंग ऑफ इंडिया द्वारा हॉल ऑफ फेम अवार्ड द्वारा आपको सम्मानित किया गया। आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में आध्यात्मिक मूल्यों की आवश्यकता विषय पर प्रकाश डालने में आपका बहुत योगदान रहा है। आपके द्वारा आयोजित वर्कशॉप, सेमिनार्स और टीवी प्रोग्राम द्वारा लाखों लोगों को मार्गदर्शन एवं प्रेरणा प्राप्त हुई। बहुत लोगों को मानसिक तनाव, चिंता, व्यसन जैसी मानसिक विकट परिस्थितियों से बाहर निकलने का प्रोत्साहन मिला। भारत के दो महान ग्रंथ रामायण और श्रीमद् भगवद गीता पर आपने बड़ा संशोधन किया है। लोग बिल्कुल अलग दृष्टिकोण द्वारा इसकी आवश्यकता को समझने और जाने इसके लिए आप सदा प्रयत्नशील हैं। ये प्रेजेंटेशन भारत, अफ्रीका, नॉर्थ एवं साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप और अन्य कई देशों में भी दिखाए जाते हैं। आपके प्रवचन, लेक्चर्स यूट्यूब पर हिंदी एवं अंग्रेजी में सुनने के लिए उपलब्ध हैं। तो ऐसी महान विभूति हम सभी के मध्य उपस्थित हैं और आज का हमारा विषय है अवेयरनेस ऑफ द सुप्रीम बीइंग। इस विषय पर हम सभी दीदी को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। आदरणीय उषा दीदी जी।
ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज का राजयोग का द्वितीय सत्र है। कल आप सभी ने प्रथम सत्र में राजयोग का आधार स्वयं का परिचय सुना और आज है राजयोग का मुख्य आधार पिता परमात्मा का यथार्थ परिचय। बहुत सुंदर अभी हम सभी ने एक गीत सुना, एक खुदा तू बता दे तेरा नाम क्या है, तेरा काम क्या है, तू रहता कहाँ है। ये संसार बनाने का तेरा मकसद क्या है, अनेक सवाल थे और शायद आज के मानव के अंदर ये सारे सवाल है ईश्वर के प्रति। क्योंकि जहां कहा जाता है कि ईश्वर एक है वो सत्य है, तो सत्य एक होना चाहिए। 10 बातें हमारे सामने हो और हम कहे 10 ही सत्य है, ये असंभव है। कुछ समय पहले एक बहन ने आकर मुझे कहा कि उसका बेटा 17 साल का है और वो अपनी माँ से पूछता है कि हिंदू धर्म में इतने भगवान क्यों हैं, क्रिश्चियन धर्म में एक गॉड क्यों है। वो माँ उस बच्चे को समझाने का प्रयत्न करती है, हिंदू धर्म में ये सारे भगवान हैं। वो बच्चा कहता है कि अगर ये सारे भगवान हैं, इन सबका हेड कौन है? फैमिली में भी एक हेड ऑफ द फैमिली होता है, तो ये सब भगवानों का हेड कौन है? वो बच्चे उस माँ का प्रश्न का जवाब नहीं दे सकती है, और इसीलिए जब भी वो माँ अपने बच्चे से कहती है बेटा मंदिर चलो, तो बच्चा मना कर देता है यही कहते हुए कि मंदिर जाने के बाद आई गेट सो कंफ्यूज्ड, वेयर शुड आई फोकस माई माइंड, मुझे अपने मन को कहाँ एकाग्र करना है ये समझ में ही नहीं आता है। तो उस बच्चे को लगता है कि मंदिर जाने के बाद उसका टाइम वेस्ट होता है, इसलिए वो मंदिर नहीं जाता है। ये उस माँ का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज कई घरों में बच्चे पोते अपने माता पिता से, दादा दादी से जब पूछते हैं कि आखिर भी इन सब भगवानों का हेड कौन है, तो क्या आपके पास उसका उत्तर है? हमने एक बार एक कार्टून देखा जिसमें एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, और न्यूज़पेपर में जितनी कॉलम आती है हर कॉलम में ईश्वर के बारे में कुछ न कुछ लिखा था। पहली कॉलम में लिखा था नेचर इज गॉड, प्रकृति परमेश्वर है। दूसरी कॉलम में लिखा था अहम ब्रह्मास्मि, हम ही परमात्मा है, आत्मा सो परमात्मा। तीसरी कॉलम में लिखा था ब्रह्म ईश्वर है। चौथी कॉलम में लिखा था वो कहां नहीं है, कण कण में व्यापक है, सर्वव्यापी है। पांचवी कॉलम में लिखा था वो निराकार है, न नाम है न रूप है न आकार है। छठी कॉलम में लिखा था वो साकार है, जितने भी इष्ट देवी देवताएं हो गए सब परमात्मा के रूप है। और नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था देयर इज नथिंग लाइक गॉड, अगर सचमुच भगवान है तो कैन यू प्रूव इट। अब जो व्यक्ति ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, सारी कॉलम्स पढ़ने के बाद उसने क्या डिसीशन लिया होगा? व्हाट इज ट्रूथ? क्या ये सभी सत्य है? इसमें से एक सत्य है या सत्य कुछ और है जिसको अभी तक हम समझ ही नहीं पाए? जैसे वो कहानी है कि एक बार पांच सूरदास थे, उन्हें कहा गया हाथी घर में जाकर देखो हाथी कैसा है। थे तो नेत्रहीन, गए हाथी घर में, जिसके हाथ में जो आया वैसे हाथी को डिस्क्राइब कर दिया, लेकिन क्या वो सत्य थे? क्या कहेंगे, पांचों ही सत्य थे? पांच में से एक सत्य था या सत्य कुछ और है हाथी के विषय में जिसको वो देख नहीं पा रहे थे? कहीं हमारी हालत भी ऐसी तो नहीं हो गई? मनुष्य भी जब भगवान के मंदिर में जाता है तो यही गाता है, नैन हीन को राह दिखाओ प्रभु। इस नैन की बात नहीं है, ज्ञान चक्षु न होने के कारण शायद ईश्वर के सत्य स्वरूप को हम भी समझ ही नहीं पाए। तो ईश्वर किसको कहा जाए? क्या ब्रह्मा कुमारियों ने कहा उसको हमें मान लेना है? नहीं, आज हम आपको मत नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास बहुत सारी मतें हैं ईश्वर को लेकर के, लेकिन आज हम आपको एक कसौटी देंगे जिस पर आप अपनी मत को कस कर देखो सत्य है और सत्य को प्राप्त करो। ये कसौटी है पांच बातें। सबसे पहली बात, ईश्वर उसको कहा जाता है जो सर्व धर्म मान्य हो, जिसको सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करें उसको कहेंगे सत्य। ये नहीं कि हिंदुओं का भगवान अलग है तो मुसलमानों का अलग है तो क्रिश्चियनों का अलग है। गॉड इज वन, ईश्वर एक है और वह सत्य है। तो जिसको, जिस सत्य को सभी ने स्वीकार किया हो उसको कहेंगे सत्य। दूसरा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्वोच्च शक्ति हो, सुप्रीम अथॉरिटी, जिसके ऊपर कोई नहीं हो, जिसका कोई माता पिता बंधु गुरु शिक्षक रक्षक न हो, उसको कहेंगे परमेश्वर। जो सर्व का मात पिता बंधु शिक्षक रक्षक हो। तीसरा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्व परे हो। मनुष्य आत्माएं संसार के अनेक चक्रों में आते हैं, जन्म और मृत्यु का चक्र। ईश्वर के लिए कहा जाता वह अजन्मा है, अकाल मूरत, जिसको काल नहीं खा सकता है। तो जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। दूसरा, जिसने जन्म लिया उसने देह धारण किया, और देह है तो देह के संबंध है। ईश्वर के लिए कहा गया वो अव्यक्त, जिसको व्यक्त देह नहीं है। जिसने देह धारण किया उसने कर्म किया, और कर्म किया तो कर्म का फल भोगना पड़ता है। तो कर्म और कर्म के फल के चक्र में मनुष्य आत्मा आती है। परमात्मा अकर्ता भोक्ता है। जिसने कर्म किए या तो वो कर्म पाप कर्म होगा या पुण्य कर्म होगा। तो पाप और पुण्य के चक्र में भी हम आते हैं, परमात्मा उस चक्र से भी परे है। और पाप और पुण्य के फल स्वरूप या सुख मिलता या दुख मिलता। तो सुख दुख के चक्र में भी हम आते हैं। वो दुख हरता सुख करता है, इसलिए उसको हरि कहते हैं। तो जो इन सभी चक्रों से पर है उसको कहेंगे परमात्मा, सर्वोपरे। चौथी बात, परमेश्वर उसको कहेंगे जो पर होते हुए भी सर्वज्ञ है, ज्ञाता है। संसार के आदि मध्य अंत का ज्ञान है जिसके पास, त्रिकालदर्शी जिसको कहा, त्रिनेत्री जिसको कहा, जो मनुष्य को भी ज्ञान के दिव्य चक्षु देने वाले हैं, और जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी रचने वाले त्रिदेव है। तो यह तीन की महिमा भी उसी के साथ लगती, जो त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री और त्रिमूर्ति है। और पांचवा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्व गुणों में अनंत है, इन्फिनिट इन इट्स क्वालिटीज, सर्वशक्तिमान है। ये पांच बातें हैं कसौटी। सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च शक्ति, सर्वोपरे, सर्वज्ञ और सर्व गुणों में अनंत। अब ये पांचों बातें किसके साथ लगती है, एक एक बात को उठा करके हम देखें। जब हम कहते हैं कि नेचर इज गॉड, तो क्या नेचर के साथ ये पांचों बातें लगेगी? क्या नेचर को सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करेंगे? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? स्वीकार करेंगे? किसी ने बहुत सुंदर ये गीत की लाइन लिखी है, वो कौन चित्रकार है, वो कौन चित्रकार है जिसने प्रकृति का इतना सुंदर चित्र खींचा हो, वो चित्रकार कौन है? तो सत्य किसको कहे? प्रकृति ही परमेश्वर है कहना सत्य है, या प्रकृति उस परमेश्वर की रचना है कहना सत्य है? आपका विवेक क्या कहता है? क्या कहेंगे? कुछ तो बोलो। रचना है कहना सत्य है। थोड़ा इंटरैक्टिव हो, अच्छा लगेगा। रचना है कहना सत्य है, तो प्रकृति को परमेश्वर मानना ये अज्ञान था, इट वॉज आउट ऑफ इग्नोरेंस। जो हमने मान लिया सत्य तो नहीं है। दूसरी बात, जब कहते हैं कि हम ब्रह्मास्मि, हम ही परमात्मा है, ये कहां तक सत्य है? अगर हम ही परमात्मा है तो फिर मंदिरों में जाकर हमने ये क्यों गाया, त्वमेव माता शिपिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। सत्य क्या है? हम ही ईश्वर हैं, या हम उस परमात्मा की संतान है? सत्य क्या है? आपका विवेक क्या कहता है? आत्मा परमात्मा की संतान है कहना सत्य है। तो कई बार कई लोग कहते नहीं, जीवन में अगर हम पुरुषार्थ करेंगे तो हम परमात्मा बन जाएंगे। परमात्मा कोई बनने की चीज नहीं है, कोई डिग्री नहीं है जो मैंने पुरुषार्थ किया और प्राप्त हो गई। आज इंसान संसार में कोई भी पोस्ट पोजीशन को प्राप्त कर सकता है अपने पुरुषार्थ से, लेकिन कोई भी इंसान खुद का बाप बन सकता है? बन सकता है? नहीं बन सकता है। पिता के सामने वो बच्चा ही होगा, कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वो पुत्र ही रहेगा। ये नहीं कि अब पुरुषार्थ किया वो खुद का बाप बन गया। ईश्वर अगर हमारे पिता है, माता पिता कहा, तो हम खुद के माता पिता कैसे बन सकते हैं? कोई भी मनुष्य पुरुषार्थ करता है, वैसे पोस्ट पोजीशन को प्राप्त कर लेगा। किसी ने पुण्य कर्म किया कहेंगे ये पुण्यात्मा है, किसी ने महान कर्म किया कहेंगे ये महात्मा है, किसी ने धर्म का काम किया कहेंगे धर्मात्मा है, किसी ने दिव्य कर्म किया कहेंगे देवात्मा है। देवात्माएं अनेक है, महात्माएं अनेक है, धर्मात्माएं अनेक है, पुण्यात्माएं अनेक है, पापात्माएं अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। परमात्माएं ग्रामर में ये शब्द नहीं आता है, गॉड इज वन। और ये सब भी आत्माएं हैं, परमात्मा कोई नहीं। महान आत्मा महान परमात्मा नहीं कहा, देव आत्मा देव परमात्मा भी नहीं कहा। और भारत में देव आत्माएं भी कितने दिखाते हैं, 33 कोटी देव आत्माएं दिखाया। तो देवात्माएं अनेक है, महात्माएं अनेक है, पुण्यात्माएं अनेक है, लेकिन परमात्मा एक। क्लियर हो गई बात? कई बार कई लोग कहते नहीं, हम परमात्मा के अंश हैं। जैसे सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, एक बड़ा परमात्मा है, उसके अंश होकर के हम इस संसार में आए और अंत में जाकर उसी में विलीन हो जाना है और परमात्मा बन जाएंगे। ये कहां तक सत्य है? सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, ये संभव है, क्योंकि वो मैटर है। मैटर मैटर में मिल सकता है, तत्व तत्व में मिल सकता है, लेकिन आत्मा या परमात्मा शक्ति है, तत्व नहीं है। और आत्मा के लिए गीता में दूसरे अध्याय में यही कहा गया कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। अजर जर्जर भी नहीं होती, अमर मरती भी नहीं है, अविनाशी जिसके अस्तित्व का विनाश नहीं हो सकता है। तो वो विलीन कैसे हो सकती? अगर विलीन हो गई तो उसका अस्तित्व समाप्त हो गया, तो आत्मा परमात्मा में विलीन नहीं हो सकती है। हम ईश्वर की संतान जरूर है, परमात्मा बन नहीं सकते या उसमें विलीन नहीं हो सकते। क्लियर हो गई बात? तीसरी बात, जब हम कहते हैं ब्रह्म ईश्वर है, ये कहां तक सत्य है? क्योंकि मनुष्य अज्ञानता के कारण दो दो बातें करता रहा। एक तरफ कहा आत्मा परमात्मा के संतान है, दूसरी ओर कहा हम ब्रह्मास्मि। एक तरफ कहा प्रकृति परमेश्वर है, दूसरी ओर कहा प्रकृति परमेश्वर की रचना है। इसी तरह एक तरफ कहा ब्रह्म ईश्वर है, तो दूसरी ओर कहते पार ब्रह्म परमेश्वर। पार, पांच तत्वों की दुनिया से पार निवास करने वाले परमेश्वर, जिसके लिए गीता में कहा मेरा धाम ऊंचे ते ऊंचा धाम परम धाम है। तो सत्य किसको कहे? ब्रह्म ही ईश्वर है कहना सत्य है, या पार ब्रह्म परमेश्वर है कहना सत्य है? पार ब्रह्म परमेश्वर है कहना सत्य है। चौथी बात, जब हम कहते हैं कण कण में व्यापक है, कहां नहीं है, सब में ईश्वर है, क्या सचमुच आपका विवेक इस बात को स्वीकार करता है कि कण कण में ईश्वर, कण कण में भगवान, तो कूड़ा कचरा गंद गटर सब में भगवान है, क्या इस बात को स्वीकार करेंगे? तब मनुष्य कई बार कहते हैं कि नहीं, प्राणी मात्र में आत्मा भी है, बाजू में परमात्मा भी बैठा है। अगर हर प्राणी मात्र में आत्मा भी हो और परमात्मा भी बाजू में बैठा हो और व्यक्ति गलत काम करता है, एक दूसरे का खून करता है, ये कर्म किसका, आत्मा का या परमात्मा का? क्या कहेंगे? आत्मा का। अगर ये कर्म आत्मा का है तो उस वक्त परमात्मा अंदर बैठ के क्या कर रहे थे? क्या इतना भी रोकने की ताकत परमात्मा में नहीं है कि मनुष्य को गलत कर्म करने से रोक सके? आज घर में बच्चे होते हैं, बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं और किसी बात पर से झगड़ा हो जाता है, मारपीट करने लगते हैं, माता पिता सामने बैठे हो, लड़ने देंगे कि उसका कर्म वो जाने? छुड़ाएंगे? क्या करेंगे? छुड़ाएंगे? एक शारीरिक माता पिता भी बच्चों को आपस में लड़ते हुए नहीं देख सकता है, तो वो तो परमात्मा है, दया के सागर, करुणा के सागर, प्यार के सागर, वो क्या बच्चों को आपस में लड़ते हुए देख सकता है, छुड़ा नहीं सकता है? सर्वशक्तिमान, क्या इतनी शक्ति नहीं है जो एक आत्मा को गलत कर्म करने से रोक सके? हमेशा जब भी मनुष्य को किसी ने कोई बात पूछी और उसको मालूम नहीं होती है तो क्या कहता है? ऊपर वाला जाने छोड़ो ना, तुम क्यों झंझट में पड़ते हो, यही कहते ना। कभी गलती से भी कहा नीचे वाला जाने, अनजानेपन में भी यही निकला ऊपर वाला जाने। तो ये ऊपर वाला कौन है और जो कण कण में व्यापक है वो कौन है? ये भाव बहुत ऊंचा है। आज मान लो कि आपका बच्चा कहीं विदेश में गया हो और वहां से वो फोन करता है और अपनी माँ से पूछता है कि माँ तुम मुझे याद करती हो? तो माँ क्या कहती है, बेटा तुझे भूलते ही कब है, तू तो हमारे दिल में रहता है, तुझे भूलते ही कब है। फिजिकली वो दिल में नहीं रहता है लेकिन उसकी याद हमेशा दिल में रहती है। ठीक इसी तरह ईश्वर के प्रति जो कहा गया कि वो सर्वव्यापी है, ये भाव है जो अति उत्तम है। कि जब हम कहते ईश्वर हमारे दिल में रहता है, माना उसकी याद हमारे दिल में रहती है। फिजिकली वो ऊपर वाला ही है, ऊपर निवास करने वाला ही है। इसीलिए तो उसकी महिमा में गाया, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे ते ऊंचा भगवन, जिसका धाम भी इतना ऊंचा है वो ऊंचे ते ऊंचा भगवन है। गीता में 4th अध्याय में जब उन्होंने वायदा किया अर्जुन से, यदा यदा ही धर्मस्य, भावार्थ जब जब धर्म की ग्लानी होती है तब तब मैं इस संसार में अवतरित होता हूं, अधर्म के समय पर आकर अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना करता हूं। अगर वो यहीं है तो कौन आएगा? अगर वो यहीं है तो उसके होते इतना अधर्म कैसे? अनेक प्रश्न मन के अंदर खड़े हो जाते हैं। इसीलिए कहा ये भाव अति उत्तम है, ये हम भी स्वीकार करते हैं। कि आज अगर हम बाहर जा रहे हैं, कोई कहते बहन जी आप अकेले हैं, तो हम कहेंगे नहीं, भगवान हमारे साथ है। अर्थात उसकी याद हमारे दिल में समाई हुई है, उसके साथ का हम एहसास अनुभव करते हैं। लेकिन फिजिकली वो कहाँ है? ऊपर वाला है, ऊंचे तेरा, ऊंचे से ऊंचा धाम जिसका है परम धाम, और जो वायदा दिया है अधर्म के समय पर वो आते हैं, तो अधर्म के समय पर वो आते हैं। कई बार कई लोग कहा करते हैं कि सर्वव्यापकता की बात भी तो शास्त्रों में लिखी है, क्या शास्त्र गलत है? शास्त्र गलत नहीं हो सकता है, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि शास्त्र की बातों को समझने में हमने गलती किया हो, ये तो हो सकता है। आज एक छोटा बच्चा जब होता है ना और घुटना करना जब सीखता है तो घड़ी घड़ी घर से बाहर जाना चाहता है, वो सोचता है सभी जा रहे मैं भी जाऊं, और उस समय माँ को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कहीं रास्ता पर न निकल जाए। तो माँ क्या करती है, उसको दरवाजे तक ले जाती है, बाहर एक कुत्ता या गाय दिखाकर कहेगी देख बाहर गया ना कुत्ता उठा के ले जाएगा, एक डर बिठा दिया। बच्चा घुटना करते हुए दरवाजे तक जाता है, बाहर एक कुत्ता जब देखता है वापस अंदर आ जाता है, खुश होता है, प्रकट करता है ये भाव, आई एम सेफ, मुझे कुछ नहीं, मैं बाहर गया ही नहीं। लेकिन वही बच्चा 10-12 साल का हो जाए, उसके बाद उसको कह के तो देखो कि बाहर गया तो कुत्ता उठा के ले जाएगा, हंसेगा अपनी माँ पर, मेरी माँ भी कैसी है, इतना भी नहीं समझती है, कुत्ता कोई उठा के ले जाने वाला थोड़ी है। और हंसते हुए बाहर निकल जाता है और बाहर जाकर के शायद कुत्ते के बच्चे को उठाकर घर में ले आता है और कहता है मैं ही उसको ले आया, वो क्या मुझे ले जाएगा। ठीक इसी तरह ये शास्त्र ऋषि मुनियों ने लिखे, उनके पास वो अंतर चक्षु थे कि वो भविष्य को देख सकते थे। और जब उन्होंने भविष्य को देखा कि घोर पाप कर्म होगा इस संसार में, मनुष्य को पाप कर्म से बचाएं कैसे, तब उन्होंने शास्त्र में ये बात लिख दी कि हे मानव, तुम जब पाप करता है तो ये मत समझना तुझे कोई नहीं देख रहा। ठीक इसी तरह ऋषि मुनियों ने भी ये बात कही कि हे मानव, तुम जब पाप करता है तो ये मत समझना ईश्वर तुझे नहीं देख रहा है, वो सब जगह है, उसकी आंखें हजार है, वो तुझे देख रहा है। और आज से 400-500 साल पहले भी भारत में ये संस्कृति थी, जो कोई अगर किसी को पाप करने के लिए प्रेरित भी करते थे तो भारतवासी मना कर देता था, ऊपर वाला देख रहा है ये पाप मैं नहीं करूंगा, बाल बच्चे वाला हूं, समाज में रहना है, इज्जत से जीना है, मैं ये पाप नहीं करूंगा। लेकिन आज विज्ञान के युग में मनुष्य बड़ा हो गया, समझदार हो गया, और इसलिए जब कोई पाप करता है और उसको कोई कहता है अरे क्यों इतना पाप करता है, वो देख रहा है तुझे, तो क्या कहता है, वही डायलॉग, बाल बच्चे वाला हूं, समाज में रहना, इज्जत से जीना है, पाप नहीं करूंगा तो सबका पेट कैसे भरूंगा। वो डर भी खत्म हो गया और मनुष्य पाप करता ही चला गया। भावार्थ ये कि सर्वव्यापकता की बात इसलिए कही गई थी ताकि मनुष्य को पाप कर्म से बचा सके, लेकिन आज उस बात को भी उसने जुटा दिया और पाप करता ही चला गया। कई बार कई लोग हमें कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां इस बात को क्यों नहीं स्वीकार करती कि ईश्वर सर्वव्यापी है। हम कहते हैं हम उस भाव को जरूर स्वीकार करते हैं और पाप नहीं करते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है। लेकिन अगर आप सर्वव्यापकता की बात को स्वीकार करते हो और फिर भी पाप करते हो तो क्या कहेंगे, क्या आपने उस बात को स्वीकार किया? हम तो उस भाव को स्वीकार करके चलते हैं। लेकिन वाल्मीकि जी की वो बात याद आती है कि वाल्मीकि जी एक लुटेरे थे और एक बार एक महात्मा जी को उन्होंने पकड़ा। महात्मा जी ने पूछा तुम क्यों पाप करते हो, कहते मेरे परिवार को पालने के लिए। कहा पहले परिवार वाले से तो पूछ के आ कि तेरा पाप का फल भोगने का समय आएगा, तभी भी वो भोगेंगे। कहा क्यों नहीं भोगेंगे, जिसके लिए मैं पाप कर रहा हूं तो जरूर वो भी फल भोगने के समय मेरे साथ ही होगे। कहा पूछ के तो आ। कहा ठहरो आप, मैं पूछ के आता। जब पूछने गया तो माता पिता से पूछा कि पाप कर रहा हूं मैं आप सबके लिए, फल भोगने का समय आएगा तब आप साथ में होंगे। माता पिता ने कहा बेटा हम तो पहले चले जाएंगे, हम कहां होंगे, तुम कहां होंगे, तेरा कर्म का फल हम कैसे भोग सकते हैं। जवाब मिल गया। बच्चों से पूछा तो कहा पिताजी आप तो पहले जाएंगे, आप कहां जाएंगे, हम तो यहां होंगे, हमको कैसे पता, हम कैसे आपके कर्म में फल भोग सकते हैं। जवाब मिल गया। पत्नी से पूछा तू तो अर्धांगिनी है, तू तो मेरे फल भोगने के समय साथ में रहेंगी। क्या आप कहां चले जाएंगे, मैं कहां होंगी, मुझे क्या मालूम फल भोगने के समय मैं साथ रहूंगी या नहीं। और वाल्मीकि जी का परिवर्तन हो गया। ठीक इसी तरह जो इस संसार में पाप कर रहे हैं किस लिए? तो कहते हमारे बच्चे के बच्चे के बच्चे भी खा सके, इसके लिए कर रहे हैं। लेकिन जरा उनसे पूछो तो सही कि फल भोगने का समय जब आएगा तो क्या वो भी आपके भागीदार बनेंगे? अगर नहीं बनेंगे और अकेले आपको ही फल भोगना होगा तो क्या उसको समझदार कहेंगे? सर्वव्यापकता की बात एक भावनात्मक सत्य है, सिद्धांतिक नहीं कि ये माइक में परमात्मा इसलिए मैं बैठ के इसकी पूजा करूं, ये टेबल में परमात्मा इसलिए मैं बैठ के उसकी पूजा करूं, ये अंधश्रद्धा हो जाती है। हमें अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देना है, लेकिन उस भावनात्मक सत्य को अवश्य स्वीकार करना है। मैं समझती हूं स्पष्ट हो गया होगा। पांचवी बात, जब हम कहते निराकार है, न नाम है न रूप है न आकार है, नाम रूप आकार बिना इस संसार में कोई चीज है? कोई चीज नहीं है। हवा जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन अगर एक चित्रकार को चित्र निकालना हो और उसको तेज हवा दिखानी हो तो दिखा सकता है या नहीं दिखा सकता है? चित्र में वो दिखा सकता है, चित्र देखकर कोई भी कहेगा बड़ी तेज हवा चल रही है। जो हवा का आकार नहीं है उसको भी एक चित्रकार अपने चित्र में ढाल देता है तो क्या परमात्मा स्वयं नाम रूप आकार बिना होगा? नहीं, उसका भी अपना नाम रूप आकार है। कौन सा? जिस तरह एक पक्षी का पिता पक्षी है, पशु का पिता पशु है, मनुष्य का पिता मनुष्य है, तो आत्मा का पिता परमात्मा। आत्मा का स्वरूप कैसा है? ज्योतिपुंज। इसीलिए व्यक्ति जब शरीर छोड़ते तो ज्योत जलाई जाती है कि जो चैतन्य ज्योत थी वो चली गई, उसकी यादगार में वो ज्योत है। आत्मा का स्वरूप अगर ज्योति स्वरूप हो तो उसके पिता का स्वरूप कैसे होना चाहिए? परम प्रकाश, अनंत प्रकाशमान, दिव्य तेजोमय स्वरूप। अब उसके साथ वो पांचों बातें लगती है। तो जिसको हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंगम के रूप में हमने पूजा, ज्योतिर्लिंगम अर्थात जो ज्योति की आकृति है, ज्योति की पूजा कैसे करें, इसलिए भारतवासियों ने एक आकृति दे दी और नाम दिया सदाशिव, यानी जो सदा कल्याण करने वाले हैं। गुणवाचक नाम है। भारत में द्वादश ज्योतिर्लिंगम आज भी महान तीर्थ स्थान है जिसके साथ कोई न कोई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई। द्वादश ज्योतिर्लिंगम तो तीर्थ स्थान है ही है, लेकिन मैं कहती हूं भारत का कोई गांव भी ऐसा नहीं होगा जहां महादेव जी का मंदिर न हो। इसीलिए उसको कहा देवों का भी देव महादेव, जिसकी पूजा देवताओं ने भी की या देवताओं के भी जो आराध्य रहे उसको कहेंगे परमेश्वर। श्री कृष्ण के आराध्य कौन थे? शिव। श्री राम के आराध्य कौन थे? शिव थे। रामेश्वरम में जहां उन्होंने शिव की पूजा करके फिर रावण से युद्ध किया, श्री कृष्ण ने वृंदावन के अंदर गोपेश्वर गोपों के साथ मिलकर के जिन्होंने शिव की पूजा की, महाभारत युद्ध के पहले भी श्री कृष्ण ने थानेश्वर की पूजा की, पांडवों से भी कराई, उसके बाद महाभारत युद्ध आरंभ हुआ। अगर श्री कृष्ण ही परमात्मा होते तो अपनी पूजा कराते, ज्योतिर्लिंगम की पूजा क्यों कराई? ज्योतिर्लिंगम के जितने भी मंदिर है उन मंदिरों के नाम भी गुणवाचक कर्तव्यवाचक, और मंदिरों के नाम या ईश्वर या नाथ में पूरे होते हैं। अमरनाथ, बबुलनाथ, भोलेनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, पशुपतिनाथ, या ईश्वर रामेश्वर, गोपेश्वर, विश्वेश्वर, पाप कटेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, ये सारे शिव के मंदिर हैं। जो सर्व का नाथ और ईश्वर है वो एक ही है। इसीलिए देवताओं ने तो जिसको अपना आराध्य माना ही, लेकिन जिन देवियों की पूजा हम करते नवरात्र में, भारत में 51 पीठ है, वो देवियां कौन थी? तो कहते शिव शक्ति की आरती जे कोई गाए, शिव शक्तियों के रूप में उनका गायन किया। तो जो देवों का भी देव, देवियों का भी देव, वही तो महादेव है। लेकिन यहां भारतवासी एक गलती जरूर कर देते हैं अज्ञानता के कारण, जो शिव और शंकर को मिला देते हैं, जहां दोनों का नाम ही अलग है, शिव और शंकर, जहां दोनों की आकृति अलग है, आइडेंटिटी अलग है, एक है निराकार ज्योतिर्लिंगम, एक है आकारी देव पुरुष, जहां दोनों का कर्तव्य अलग है, शिव को कहा भोलेनाथ सदा कल्याण करने वाले, और शंकर के लिए कहते तीसरा नेत्र खुलता है तो महाविनाश प्रलय होता है, एक प्रलय नाथ है एक भोलेनाथ है। जब भी कोई मंत्र देता है तो ओम नमः शिवाय का मंत्र देता है, उसको किसी ने ओम नमः शंकराय नहीं जपा। शिव के लिए ही कहा जाता है भारत में हर साल दो दो महाशिवरात्रि मनाई जाती है, उसको शंकर रात्रि नहीं कहते हैं। अगर एक है तो कहना चाहिए। शिव को हमेशा त्रिदेव कहा, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है, त्रिदेव, शंकर उसकी रचना है, शिव रचयिता है। तो इसीलिए कहा कि शिव और शंकर एक नहीं। शंकर को गृहस्थ धर्म में देखा है, माँ पार्वती ये दो बच्चे हैं और सारा परिवार मिलकर के शिव की पूजा कर रहे हैं, ऐसे भी चित्र दिखाए हैं। शंकर को ध्यान मुद्रा में दिखाए, किसका ध्यान करते हैं? अगर वही परमात्मा है तो उसको किसका ध्यान करने की आवश्यकता थी? कैलाश पर्वत पर बैठकर जब उन्होंने ध्यान किया, कैलाश माना दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा शिवलिंग, पूरा पर्वत ही शिवलिंग आकार का है, वहां बैठकर अगर शंकर ने भी ध्यान किया तो किसका किया? शिव का ध्यान किया। तो इसीलिए शिव और शंकर दो हस्तियां हैं। शिव परमात्मा है, इसीलिए कहा जाता ब्रह्मा देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर देवाय नमः, शिव परमात्माय नमः, शिव परमात्माय नमः। जो परमात्मा है, ये तीन देवता है, त्रिदेव है वो शिव। ये तो हुई भारत वालों की बात। भारत से बाहर जाए इस्लाम धर्म में तो कहा अल्लाह नूर है, नूर, नूर माना तेज प्रकाश, ज्योति माना तेज प्रकाश। इसीलिए जब मक्का जाते हैं तो वहां मक्केश्वर है, काबा का पवित्र पत्थर है। तो जिसको अल्लाह कहा वो नूर है, हिंदुओं ने सदा शिव कहा, ज्योति स्वरूप है, बात एक ही है या अलग है? और आगे जाए क्रिश्चियन धर्म में, जीसस ने कभी नहीं कहा आई एम गॉड, उसने हमेशा ही कहा गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। वेटिकन में चले जाओ, वेटिकन के अंदर जहां पोप की गद्दी है, वहां पर कोई व्यक्ति की प्रतिमा नहीं रखी गई है, निराकार ज्योतिर्लिंगम परमात्मा का सिंबल है, जिसको क्रिश्चियनों ने लाइट कहा, मुसलमानों ने नूर कहा, हिंदुओं ने ज्योति कहा, बात एक ही है या अलग है? और आगे जाए महात्मा बुद्ध ने भी किसी व्यक्ति पूजा या कोई देवों की पूजा में किसी के लिए प्रेरित नहीं किया, लेकिन वो भी खुद ध्यान मुद्रा में है। किसका ध्यान कर रहे हैं? उनसे श्रेष्ठ कौन था जिसका ध्यान महात्मा बुद्ध भी कर रहे थे? कहा निराकार का ध्यान कर रहे थे। पारसी लोग जब ईरान से भारत आए तो जलती हुई ज्योत को लेकर के आए। आज भी उनके मंदिर को कहा जाता है द फायर टेम्पल, जहां अखंड ज्योत निरंतर जलती है, जिसके लिए कहा अखंड ज्योति स्वरूप। गुरु नानक देव ने कहा एक नूर, इसीलिए दिखाते कि गुरु गोविंद सिंह जी ने भी उस शिव की महिमा गाई थी। तो सर्व धर्म मान्य कौन है? एक ही तो है निराकार ज्योति स्वरूप, लाइट नूर परमात्मा, अखंड ज्योति स्वरूप। चाहे नाम अलग अलग दिए, किसी ने गॉड कहा, अल्लाह कहा, ईश्वर कहा, प्रभु का मालिक कहा। साईं बाबा ने कहा सबका मालिक एक, उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूं। सबका मालिक एक, उस मालिक की ओर इशारा किया, वो भी उसी को याद कर रहे थे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? सबने उसकी ओर इशारा किया। भारत के अंदर तो देवताओं ने उसकी पूजा करके दिखाया, उसको पूजो। हमने श्री राम को पूजना शुरू किया, श्री राम उनको पूज रहे हैं, हम श्री राम को पूज रहे हैं, हम साईं बाबा को पूज रहे हैं। जब सबने उसकी ओर इशारा किया तो हम लोग रास्ता भटके कहां से? हम भटक गए हैं। और इसीलिए आज इतने मत मतांतर हो गए, जितने मुख उतनी बातें ईश्वर के विषय में। वही सर्वोच्च शक्ति है, इसलिए शिव के साथ एक शब्द जुड़ता है, शिव शंभू। शंभू माना जो स्वयं भू, स्वयं प्रकट हुआ है, उसको उत्पन्न करने वाले कोई माता पिता नहीं है। सभी देवताओं के अपने अपने मात पिता दिखाए हैं, शिव के मात पिता कौन है? स्वयं भू है, स्वयं प्रकट हुए। सभी चक्रों से पर है, अजन्मा है, अकाल मूरत। कहा जाता है कि अमरनाथ जो मरता नहीं है, अमर आत्माओं का जो नाथ है, अकाल मूरत है, जिसको काल कभी नहीं खा सकते, महाकालेश्वर उसको कहा, जो कालों का भी महाकाल ईश्वर है। तो जो जन्म और मृत्यु के चक्र से पर है, देह और देह के संबंधों के चक्र से भी पर है, कर्म और कर्म के फल के चक्र से भी पर है, जो सुख दुख के चक्र से भी पर है, जो पाप और पुण्य के चक्र से भी पर है, सभी चक्रों से पर वही परमेश्वर है। पर होते हुए भी सर्वज्ञ है, इसीलिए शिव के ऊपर तीन लकीर लगाई जाती है, अर्थात जो आदि मध्य अंत के ज्ञाता है, त्रिकालदर्शी है। उस तीन लकीर के बीच में एक आंख होती है, अर्थात त्रिनेत्री मनुष्य आत्मा को भी ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करने वाले हैं। और उसकी पूजा में तीन पत्र का बैल पत्र चढ़ता है, अर्थात जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है, त्रिदेव है, सर्वोच्च शक्ति है और सर्व गुणों में अनंत है, सर्वशक्तिमान है। भारत में जितने भी मंदिर है, गुणवाचक कर्तव्यवाचक जिसके नाम है, इतने अनंत नाम है जिसके, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों दिशा में उसकी पूजा होती है। नॉर्थ में जाओ अमरनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है, साउथ में जाओ रामेश्वर के रूप में उसकी पूजा होती है, ईस्ट में जाओ काशी विश्वनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है, वेस्ट में जाओ सोमनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है। देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई। नॉर्थ में जाएंगे श्री राम श्री कृष्ण की पूजा अधिक मिलेगी, लेकिन साउथ में चले जाओ श्री वेंकटेश बालाजी की पूजा मिलेगी, तो कलकत्ता चले जाओ दुर्गा पूजा काली पूजा मिलेगी, गुजरात महाराष्ट्र में जाओ गणेश पूजा मिलेगी, तमिलनाडु में जाओ कार्तिकेय की पूजा मुर्गन की पूजा मिलेगी, राजस्थान में जाओ रामदेवरा जी की पूजा मिलेगी। देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई, लेकिन भारत भर में शिव की पूजा, हर गांव में भी महादेव जी का मंदिर जरूर मिलेगा। तो देवों का भी देव महादेव है। इसीलिए कल को अगर आपका बच्चा आपका पोता आपसे पूछे कि ये सभी भगवानों का हेड कौन है, तो बता सकेंगे या नहीं बता सकेंगे? क्लियर हो गया? अच्छा, तो 2 मिनट परमात्मा की स्मृति में बैठते हैं और ध्यान करते हैं।